सम्मान योग गुरु सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की एक पंक्ति का विचार आरंभ करा। रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। साहिबां का फरमान है भुख का ते स्वाद का आपस विच मेल है। जिथे भुख नहीं उथे स्वाद नहीं। भुख ते स्वाद दोवें कट्ठे ही रहिंदे ने। जिस चीज की भुख ना होवे उस वस्तु की प्राप्ति विच रस भी नहीं होंदा स्वाद भी नहीं होंदा। रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंद। कई दफा मनुख कहिंदा है अज भोजन मैनू बड़ा स्वादी लगे है, पर खोजी कन नहीं भुख करके स्वादी लगे। जितनी ज्यादा भुख होवे उतना ही भोजन विच स्वाद बन जाता है। जितनी तीव्र भुख होवे उतना ही रस बन जाता है। उस वस्तु ते चीज दे बेरसी पैदा हो जाती है जिसकी कि मनुख नूं भुख ना आवे, तड़प ना आवे, खिच ना आवे। बगौर मुताला करिए कि जगत की हर भुख दे नाल दुख का जोड़ है। भुख है तो कुदरती गल दुख भी रहेगा। भुख ते दुख दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। धन की भुख है दुख है, औलाद की भुख है दुख है, इज्जत मान मर्यादा की भुख है दुख है, भोजन की भुख है दुख है। इस वास्ते दुख ते भुख इन्हों का चोली दामन का साथ है, दोवें कट्ठे ही रहते। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है पर एक ऐसी भुख भी है अगर मनुख दे अंदर किधरे पैदा हो जाए तो वह भुख तृप्ति देंदी है, वह भुख रस देंदी है, वह भुख दुख नूं नहीं जन्म देंदी, वह भुख अनेक सुखां नूं ते रस नूं आनंद नूं जन्म देंदी है। महाराज उस भुख का जिक्र करते हैं। बगौर मुताला करिए संसार विच कोई ना कोई भुख मनुख दे अंदर बनी रहती है। मनुख जिंदगी दे हर पहलू विच तृप्त नहीं होंदा। किसे नूं औलाद दी भुख है, किसे नूं धन दी भुख है, किसे नूं इज्जत मान मर्यादा दी भुख है, किसे नूं रोजगार दी भुख है, किसे नूं विचारां दी ज्ञान दी भुख है। गरज के भुख कोई ना कोई मनुख दे अंदर रहती है। इस वास्ते मनुख दे मन विच कोई ना कोई दुख भी रहिंदा। अगर दुख है तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई भुख है। भुख तो बिना दुख नहीं होगी। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान एक भुख मेरे अंदर भी है। केड़ी? साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। महाराज कहने वो भुख है सच्चे नाम की। हुण पातशाह तो पुछिए ये भुख थानू किन्नी क लगी है। भुख की आखिर गिणती की जा सकती किन्नी क है। भुख का अंदाजा लाया जा सकता है भी किन्ने नाल तू रजेगा, कितने नाल तू तृप्त होवेगा। जपदा पातशाह तो यह प्रश्न होया महाराज थानू सच्चे नाम की किन्नी क भुख है। आपने जोड़ा उदाहरण दिता है बड़ा गजब का। साहबों का फरमान मारू मी ना तृप्तिया अग्गी लहे ना भुख, राजा राज ना तृप्तिया सायर भरे के सुख, नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ। साहब कहन मैथों ना पुछो कि मैनू नाम की भुख किन्नी क लगी है, ना पुछो। रेत के टिब्बे से पुछ लो, मरु थल तो पुछ लो ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰੂ ਥਲ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਘਟੇ ਤੇ ਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਮੇਂ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਧਕਾਏ। ਹੇ ਮਾਧੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਮਿਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤੇ ਪੀਣਾ ਕਿਸਨੇ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿਸਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭੁੱਖ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਵਾਦ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਬੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਭੁੱਖ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਭੁੱਖ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਸ ਘਟਦਾ। ਭਜਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਸ ਵੱਧਦਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ, ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ 104 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਬਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਰੋਸੇ ਹੋਇਆ ਥਾਲ ਰੱਖ ਦਈਏ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਏ ਨਾ, ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਤ ਬੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰੋਗੀ ਜੋ ਸਭ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਲੋਭ ਹੈ, ਆਸਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਤਾਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਪੇ ਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਣਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੋਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। तंदुरुस्ती सिर्फ एक है, बीमारियां बहुत सारिया ने। और इन्हीं में अर्ज कर दिया, अवगुण बहुत सारे ने, बहुत सारे ने, गुण सिर्फ एक ही है। एक अवगुण अनेका ने नहीं गिने जा सकते, ते गुण सिर्फ एक ही है। मनुख नु भजन करने की जांच आ जाए, नाम जपन की जांच आ जाए, इस एक गुण के नाल बाकी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जिवे तंदुरुस्ती हो बंदा सारे काम अपने आप कर लेंदा, बीमार है तो नहीं कर सकता। एक गुण आ जाए बाकी गुण अपने आप आ जाते हैं। तो जे एक गुण नहीं तो समझ लेना चाहिए फिर एक बीमारी नहीं अनेक बीमारियां ने। अंदर हंकार है मनुख रोगी है, अंदर लोभ है बंदा रोगी है, अंदर वासना है बंदा रोगी है। हुण मैं ऐसा देखना कि विज्ञान ने साइंस ने बड़ी तरक्की कर दी है, किसी बंदे दे तन नूं ताप चढ़िया होवे, बकायदा मीटर बने हुए ने मत्थे ते रखिए या मूंह च रखिए, थर्मामीटर है वो दस देंदा कि इहनूं किन्ने क डिग्री का ताप चढ़िया। अज तक विज्ञानिकां ने कोई ऐसा मीटर नहीं बनाया बंदे दे मूंह च पाइए ते पता चले किन्ना क लोभी है, किन्ना झूठा है, कितनी इस दे च वासना है, कितनी इस दे च तृष्णा है, कितनी इस दे अंदर द्रोह होई है, कितना इस दे अंदर हंकार है। मन दियां बीमारियां नूं पढ़न वास्ते अजे कोई मीटर इजाद नहीं होया, अजे नहीं पता चलता। इस वास्ते बंदा बंदे तो धोखा खा जांदा है। मनुख की दुनिया में बड़ा भारी अनर्थ है, तन के रोग का पता चल जाता है, मन के रोग का पता ही नहीं चलता। और तन करके तो कोई कोई रोगी हूँ तुम सारे बैठे चलो तंदुरुस्त बैठे, क्योंकि बीमार बंदा तो बैठ ही नहीं सकता, नहीं बैठ सकेगा। पर जो मन करके देखिए कि साहब कहने जो जो दिसे सो सो रोगी, जिन्हों भी देखी हो रोगी है मन करके। रोगी की पहचान है, जिहड़ा तन करके रोगी है, जिन्हों तन का ताप चढ़िया है उन्हों भोजन नहीं चंगा लगेगा, ते जिहदे मन नूं ताप चढ़िया होया है उन्हों भजन नहीं चंगा लगेगा, कीर्तन बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा, कथा बिल्कुल नहीं चंगी लगेगी, बाणी का पाठ बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा, नाम सिमरन बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा। यह गुरु नानक का फैसला, ऐसा बंदा मानसिक तौर पर रोगी है। और भजन कथा कीर्तन एक भोजन ही है, खुराक है, इस चक्कर च ना पैना कि कोई और गल है खुराक है, सिर्फ इन्नी गल है कि ये आत्मा की खुराक है। दो तरह की खुराक है, भोजन ते भजन। एक गल वखरी है कि साहबा ने यह दोवें कट्ठे कर दिते ने, संगत है, पंगत है, लंगर है, भजन कथा कीर्तन है। मैं देखिया लंगर का जोड़ा भोजन है ये सारे छक लेंदे ने, सारियां नूं स्वाद भी आ जांदा होगा, कीर्तन का स्वाद किसे किसे नूं आउंदा होगा, ये तृप्ति किसे किसे नूं मिलदी होगी। भोजन का रस सारे ही माण लैंदे ने, भजन का रस कोई कोई माणदा, किसे किसे नूं मिलदा होगा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का जोड़ा वाक है मुदावणी का, मुदावणी के अखरी अर्थ ने बुझारत, भी कहना कुछ होर ते उहदे च गल कुछ होर होवे, इहनूं कहिंदे ने बुझारत। और ये मुदावणियां गुरु ग्रंथ साहिब विच दो ने, एक गुरु अमरदास जी दी, एक गुरु अर्जन देव जी दी, सोरठ राग के अंदर है। ये मुदावणी विचों क्यों कढ़ीए भाई सदा रखिए उरधार, गुरु अमरदास जी महाराज की पंक्ति। तो एक शब्द साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का मुदावणी, उहदे च आपका फरमान है, थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। थाल थाली जिहदे च कुछ परोस के रखी दा भोजन ही है। महाराज बहुत वड्डा ज्ञान करा रहे ने कि जीवन एक थाल है और ये थाल दे रूप दे च परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिता है, इहदे च तीन पदार्थ ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक थाल ने, इहदे च तीन पदार्थ ने, सतगुरां ने यह पदार्थ साडे अगों रखे ने। थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचार, किहड़े तीन पदार्थ ने, इहदे च विचार है सत दे संतोख दे। दो विचारां ते ए अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधार। तीसरी विचार का दी अमृतमई नाम दी। तीन विचार ने गुरु ग्रंथ साहब च, और कोई चौथी गल नहीं है। सत दी विचार, संतोख दी विचार और नाम दी विचार, ये तीन विचार। इस तो इलावा और कुछ नहीं। सत दी विचार, सत दा मतलब उच्चा इखलाक, परोपकारी व्यक्ति, परोपकारी हो जाना, दानी सुभा दा हो जाना। सत संतोख ज्ञान जिथे आवे ना, सत संतोख कठे आ जाए, उत्थे सत दा अर्थ परमात्मा नहीं बनता, सत दा अर्थ सच नहीं बनता, सत दा अर्थ बन जाता है परोपकार। ते जिथे सत कल्ला होवे, उहदे नाल संतोख ना होवे, उत्थे गुरबाणी ग्रैमर के मुताबिक सत दे अर्थ बनते हैं परमात्मा, अकाल पुरख, ईश्वर। पर जिस सत दे नाल संतोख जुड़े हुए है, तो गुरबाणी व्याकरण के मुताबिक उसके अर्थ बन जाएंगे उस सत दे, दान, परोपकारी व्यक्ति, महान हो जाना, उच्चे इखलाक का मालिक हो जाना। तो थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख है विचार। महाराज कहते हैं इस थाल विच तीन पदार्थ ने, सत दी विचार, उच्चा इखलाक, परोपकारी वृत्ति। क्योंकि तीन गल्लां नूं दृढ़ाया सी गुरु नानक ने, नाम दान इशनान दृढ़ाया। गुरु नानक देव जी महाराज जिथे भी गए, तीन गल्लां दी दृढ़ता कराई, नाम जपना, इशनान करना ते दान करना। मैनूं कुछ सज्जन अगर यूरोप विच घूमदे आ, भ्रमण करदे आ मिले, वो कहण लगे क्योंकि हिंदुस्तान विच गर्मी बहुत पैंदी है, बहुत पैंदी है, इस वास्ते बाबे ने इशनान ते जोर बहुत दिता है, साडे देशां विच इशनान दी कोई लोड़ नहीं, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, इंज कहण लगे। क्योंकि भारत विच गर्मी बड़ी है, हिंदुस्तान विच गर्मी बड़ी है, इस वास्ते बाबे ने अमृत वेले इशनान दिते बड़ा जोर दे दिता है। जब इतनी ठंड है तो हुण बिना इशनान तो भी नाम जपया जा सकता है। मैं इतनी अर्ज कर रहा हां कि भारत विच 12 महीने गर्मी नहीं आउंदी, भारत विच ठंड भी रज के पैंदी है, ओह मान विच ठंड भी रज के पैंदी है, 4 महीने बड़ी गूढ़ी ठंड पैंदी है। ते बाबे ने यह नहीं आखिया भी गर्मियों च इशनान करना, जो ठंड पे उदो ना करना। हिंदुस्तान दे एक महीने दे हिंदू जगत दे इशनान का बड़ा महत्व है, वह है माघ का महीना। तो माघ दे बड़ी ठंड पैंदी है, बहुत ठंड पैंदी है। हुण माघ दे महीने दे इशनान की महानता क्यों रख दिती हिंदू ऋषिया ने, वो इस वास्ते कि ठंड करके किधरे बंदा आलसी ना हो जाए, इशनान लाजमी करे। इशनान नाल एक सफुरती मिलती है, एक ताजगी मिलती है, ते नाम जपण वास्ते मन राजी हो जाता, उंज राजी नहीं आता। बगौर कभी मुताला करके वेखना, सुस्ती बनी रहेगी, अंदरों मन इनकारी होएगा। इस वास्ते इशनान की बड़ी गल है, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। जिथे शरीरक इशनान एक पासे हो जाए, खिमा करनी उत्थे नाम का रस भी एक पासे हो जाता है। इशनान का नाम रस नाल बड़ा गहरा संबंध है, अगर इशनान नाम रस वास्ते कीता जाए, बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। इस थाल विच तीन पदार्थ ने, सत दी विचार, संतोख दी विचार ते नाम दी विचार। सत उच्चा इखलाक, परोपकारी वृत्ति। संतोख, लोभ ते संतोख विच दो लफ्जी व्याख्या इतनी है, जो कुछ है जैसा है ठीक है, ये संतोखी दी वृत्ति है। जो कुछ है, जैसा संसार है, जैसा परिवार है, जैसी प्रालब्ध है, ठीक है। ते लोभी दा मतलब है जो कुछ है जैसा है कबूल ही नहीं, परवान नहीं। एक बड़ी सुंदर इतिहासक गाथा है, सिकंदर जब उसने पूरा संकल्प किया कि मैं समुची दुनिया फतेह करनी है, समुची दुनिया ने बड़ा लंबा चौड़ा लाओ लश्कर ले गए ये चल पिया दुनिया फतेह करने वास्ते। बड़े मुल्क इसने फतेह किए छोटे छोटे रस्ते विच कई रजवाड़े इसने जित ले। आखिर पहुंचया हिंदुस्तान की सरहद दरियाए सिंध नू अबूर करन लग पिया जिसका पुराना नाम अटक भी सी। दरियाए सिंध के किनारे ते एक बड़ा ही मस्त सन्यासी लेटे होया सी रेत दे और नगन नंगा। सिकंदर की सेना लंघ रही सी घोड़ सवार उठ असवार पैदल ये सारे सिपाही लंघ रहे सन। बड़ा वर्दो गुबार उड़िया बड़ा शोर शराबा सी ते सब तो अखीर विच सी सिकंदर आप। उसकी दृष्टि उस फकीर ते पै गई भी लेटे आया मस्त इन्ना शोर शराबा हो रहा है इहदी मस्ती विच कोई फर्क नहीं पिया। वह घोड़े तो थले उतरिया उस सन्यासी दे कोल गया ते उस सन्यासी जो वेखदा है ते सुभावक पुछदा है सिकंदर किथे चले हैं। हैरान होया सिकंदर भी ये मेरा नाम जानदा है। सिकंदर कहिंदा मैं हिंदुस्तान फतेह करन चले हैं। ते सन्यासी कहन लगा सिकंदर जे तू हिंदुस्तान फतेह कर लिया फिर की करेगा फिर की करेगा। जिन्ने चिर तक सवाल का सही जवाब ना मिले सवाल अपनी थां ते रहिंदा और जो सही जवाब मिल जाए सवाल का अंत हो जाता है। तो सिकंदर हैरानगी विच दोबारा कहिंदा है जब मैं हिंदुस्तान फतेह कर लवांगा फिर मैं होर मुलक फतेह करांगा। उस सन्यासी कहन लगा फिर की करेगा जे तू ओ मुलक भी फतेह कर लिया फिर की करेगा। सवाल अपनी थां ते खड़ा दूर दृष्टि सिकंदर सोच रहा है कि गल वधदी जाएगी वधदी जाएगी। फिर कहिंदा है महात्मा जी तो मैं हाथ दे उते हाथ धर के थोड़ी बैठना मैं फिर होर मुलक फतेह करांगा। ते उस सन्यासी कहन लगा चलो तू होर मुलक भी फतेह कर लवें फिर की करेगा। अद की चिड़ के औखा होके सिकंदर कहन लगा फिर मैं सारी दुनिया फतेह करांगा एक चप्पा जमीन भी रहन नहीं देंगा जिस दे उते मेरा कब्जा ना होवे मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। अगों भी पूरन पुरख सी चुप करने वाला किथे सी उन्हें आख्या सिकंदर जे तू सारी दुनिया फतेह कर ली फिर की करेगा फिर की करेगा। सिकंदर कहन लगा फकीर साईं फिर मैं आराम करांगा विश्राम करांगा। ते उस सन्यासी कहन लगा जे तू आराम करना ते आ इत्थे लेट जा मैं आराम करदा पिया मैं आराम दे चा तू सौ स्यापे करके आराम करेगा ते आपां आराम दे चा आपां आराम पै करदे आपां विश्राम पै करदे तू सारी भज दौड़ आराम वास्ते है ते फिर मैं आराम दे चा। कदी बहुर मुताला करना मनुख दी सारी भज दौड़ आराम वास्ते है ते आराम कदी इस नूं नसीब नहीं आउंदा। आराम उदों ही मिलदा है जदों इहनूं चिता दे उत्ते रख दिता जांदा उस तों पहले ते आराम है कोई बेआरामी भटकना बेआरामी ता जिंदगी बनी रहिंदी है आखिरी दम तक बनी रहिंदी है। इतिहास गवाह है सिकंदर नूं आराम नहीं मिले हिंदुस्तान नूं फतेह करके जो वापस जाण लगा ना यूनान रस्ते च ही मर गया सी दम तोड़ गया सी घर नहीं पहुंच सके टिकाने ते नहीं पहुंच सके। सारी भटकण आराम वास्ते ते आराम बंदे नूं नसीब नहीं होंदा। दरअसल संतोखी बंदा कंडियां दी सेज दे उत्ते भी आराम नाल है पर लोभी बंदा फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा ही रहेगा परेशान रहेगा। जैसे जैसे संसार विच लोभ वधिया है वैसे वैसे परेशानी भी वध गई है बेचैनी वध गई है बेआरामी वध गई है। बंदे नूं आराम कित्थे नींद खो गई है हुण ते बहुते लोग नींद दीयां गोलियां खांदन ते किधरे नींद पैंदी नींद ही कोई नहीं। नींद का मतलब विश्राम आराम नींद खो गई ते जिथे नींद खो जाए उत्थे समाधि कित्थे
ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਰਮ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਖੋ ਜਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਦੇ 'ਚ 90 ਬੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 100 ਦੇ 'ਚ 90 ਬੰਦੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ। ਸਮਾਧੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸੇ ਸਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਸ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਧੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਅਜੇ ਚੰਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਪੈਗੀ, ਉਂਝ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਖੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਲਾਲਸਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਖੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਲ ਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪਖੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਦਲਦਾ? ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਤਸਵੀਰ ਉਮੀਦੋਂ ਕੀ, ਆਇਨਾ ਮਲਾਲੋਂ ਕਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੁਹੱਸ਼ਰ ਹੈ ਖਿਆਲੋਂ ਕਾ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਖਿਆਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੰਦ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਖਿਆਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਉਸਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਏ। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਹਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸ ਆਧਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਨ ਚੇ, ਕੋਈ ਖਾਵੇ, ਕੌਣ ਖਾਵੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਵਿਖੇ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕਰਨ ਮਨ ਬੀਨਾ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਨ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆ ਢੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ, ਕੁਛ ਸਤਿਆ ਬਣੇਗੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੂਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਉਦ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਅਸਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਨਹੀਂ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਨ ਚੇ, ਭੁੰਨ ਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਹੈਵੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਗੜੀ, ਤੇ ਮੈਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਗਿਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਵਹਿਸਮ ਬਾਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਿਕੰਮੀ ਭੈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬੁਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ? ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੈੜਾ। ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚੰਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਥੋਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਗਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਭੈੜਾ, ਇਹ ਭੈੜਾ, ਉਹ ਭੈੜਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਪੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਕਿਧਰੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੀਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਿਧਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਧਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੈਂਦੇ ਹੀ ਪੈਣੇ, ਲੜਦੇ ਪੈਣੇ, ਭੈਸ ਮੁਬਾਸਾ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਭੋਜਨ ਤੇ ਛਕਿਆ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਪੈ ਕੱਢਦੇ। ਤੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੌਮਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਭੰਡਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਆਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਖਿਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਬੜਾ ਚਿੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੇਦ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਦਯਾਨੰਦ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਯਾਨੰਦ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧੂਮਧਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੰਗਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐ ਸਾਕਰ ਬੂਝਿਆ ਨੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਭੈੜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਬ ਨਾ ਥੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਖਬਰ, ਦੇਖਤੇ ਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇ ਐਬੋ ਹੁਨਰ, ਜਬ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਪੇ ਪੜੀ ਨਿਗਾਹ, ਤੋ ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਹਾ। ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی عالم و فیض و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کہندا جننے چر تک مینوں اپنی کمزوریاں دا نہیں نہ پتا سی، تے میں جگت دی نندا کردا پھردا سی، اے بھیڑا ہے، اے بھیڑا ہے، اے مورکھ ہے، اے مورکھ ہے۔ کہندا جس دن میں اندر جھاتی مار کے ویکھی، ہن مینوں کوئی برا نہیں دکھائی دیندا۔ جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہنر، جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ میں ایک دن محمد صاحب کی جیون کتھا پڑھ رہا سی، ایک معصوم بالک کوئی 8-9 ورھیاں دا، وہ محمد صاحب دے نال نماز پڑھن واسطے جاندا ہے، تے نماز پڑھ کے جو فجر دی نماز پڑھ کے امرت ویلے دی نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، تے کئی بندے رستے چ ستے پئے سن، لیٹے ہوئے سن، عرب دی گرمی کئی لیٹے ہوئے سن باہر۔ وہ بچہ کہندا ہے، حضرت اے بندے کافر نے۔ بھئی کیوں؟ اے دیکھو علل صبح ہے، فجر دا وقت ہے، رب دی بندگی دا تے ستے تھے، کافر نے۔ محمد صاحب کہندے اے بالک، تو اپنی نماز تے قضا کیتی ہے، میری بھی قضا کر دیتی، ہن مینوں پھر جا کے نماز پڑھنی پئے گی۔ بھئی کیوں؟ بھئی نماز پڑھ کے ہن تینوں سارے کافر ہی دکھائی دین لگ پے؟ نہیں، اے تیری درشٹی غلط ہے، تیرا نماز پڑھیا ہوا غلط ہے، تینوں ہضم نہیں ہوئی نماز، تو الٹی کر چلی، تینوں سارے ہی کافر دکھائی دین لگ پے۔ میں دیکھے ہے ہن کوئی تھوڑا بہت نام جپن لگ پے، بس سارے ہی کافر دکھائی دین لگ پے، تھوڑی جی بانی پڑھن لگ پے، سارے ہی کافر دکھائی دین لگ پے، تھوڑا جا نتنیم کرن لگ پے، سارے ہی پیڑے دکھائی دین لگ پے۔ یقین جانو انہوں جیون دے ڈھنگ دا ہی نہیں پتا، یہ تو الٹیاں کرتا پیا، جو کچھ چھکے ہضم ہی نہیں ہویا۔ اگر انہوں ہضم ہوگا تو کبیر سب تے ہم برے، ہم تج بھلو سب کوئے، جن ایسا کر بوجھیا میت ہمارا سوئے، ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئے، پرمت نانک تارے سوئے۔ صاحب کہنے کوئی اسی کسی نو برا نہیں کہنا، اسی چنگے ہیں، کوئی برا ہی نہیں۔ یہی کارن ہے کہ گرو نانک دی جوگیاں نال بھی بن آئی، مکے دے حاجیاں نال بھی بن آئی، بنارس دے پنڈتاں نال بھی بن آئی، ہردوار دے برہمناں نال بھی بن آئی۔ سارے جگت نے گرو نانک تو سکشا دکشا لئی، کیونکہ گرو نانک دا ڈھنگ بڑا نرالا سی، بڑا نرالا، بڑا مہان ڈھنگ سی۔ کسے دی نندا کر کے، کسے نو چوٹ پہنچا کے وہ اپنی گل نہیں سنا دے سن، بڑا میٹھا طریقہ سی، میٹھ بولڑا جی، ہر سجن سوامی موڑا۔ میں کئی اپنے سکھ جگت وچ بھی دیکھنا جنہوں لوگ کہتے ہیں بہتا ہی کٹر ہے جی، تو بہتا کٹر کا مطلب اتنا ہے بہتا بھجنی کو بھی گلتے ٹھیک ہے، پر جی ہوں بھجن کرنے تو بعد آ کے اے پیڑا ہے، اے پیڑا ہے، اے پیڑا ہے، اے پیڑا ہے، سمجھ لو الٹیاں کرتا پیا، اور کچھ نہیں۔ یہ چھکی ہوئی غذا ہضم نہیں ہوئی، یہ چھکے ہوا بھوجن ہضم نہیں ہوا، جی ہضم ہو جاتا الٹیاں نہیں کرتا، وہ باہر نہیں سٹتا۔ اس واسطے گرو ارجن دیو جی نے فیصلہ کر دیتا ہے، جے کو کھاوے جے کو پہنچے، کوئی کھاوے تے کھان تو بعد ہضم کرے، پچدا نہیں، ہر ایک نو نہیں پچدا۔ ہن بھوجن بڑا ہیوی ہوے، سخت ہوے، پوشٹک ہوے، تے میدا کمزور ہوے، تے کھا لو الٹیاں ہی ہون گیاں، اور کی ہے، یا بیمار بندہ کھا لو تاں وی الٹیاں ہون گیاں۔ تو اسی طریقے نال کئی بندے بانی پڑھن تے لگ پیندے نے، نتنیم بہتا کرن لگ پیندے نے، انجام کی ہوندا ہے، انہاں نو سارا جگت بھیڑا ہی دکھائی دیندا، اے بھیڑا، اے بھیڑا، یہ کوئی چنگی درشٹی نہیں ہے۔ اتنی میں عرض کر دیا، کیونکہ گرو ارجن دیو جی مہاراج کا فیصلہ ہے، آپس کو جو بھلا کہاوے تسے بھلائی نکٹ نہ آوے۔ دوجیاں دیاں کمزوریاں تے خامیاں دا ذکر بھی اس ڈھنگ نال کرنا ہے کہ اگلے دا دل نہ ٹوٹے، دل شکنی نہ آوے۔ حاجیاں نوں کہ خدا دا واسا چاروں پاسے ہے، ہن کس طرح دسی جائے؟ سبھاؤ کی لتاں خانے کعبے دی طرف طرف کر کے سو گئے۔ قدرتی گل ہے، امام نو غصہ چڑھنا سی، بڑا غصہ چڑھیا۔ بھائی صاحب کہنے پہلے تے اس نے آ کے سینے چ کھچ کے لت ماری، جیون ماری لت دی، کیڑا ستا کفر کفاری، پھر گال کڈی، ایک کون مہان کافراں دا کافر ستا پیا، ایک تے گال کڈی۔ ہوں کافر کہہ دینا کسی رب نال جڑے ہوئے منکھ نوں بہت وڈی گال ہے، بڑی وڈی گال ہے، تے نری گال نہیں کٹی، سینے دے کھچ کے لت ماری، पर मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाथ जोड़ के कहने ने हाजी तू उसे पासे मेरे पैर कर दे जिस पासे खुदा ने। ना कौड़ा बचन ना कोई ऐसी गल, ते मैं देखे थोड़ा जिहा बंदा नाम जपन लग पे बस मुंह च जहर ही निकलती और कुछ नहीं, कौड़ा ही बचन, कुड़कन ही बोली जाता। जिदे अंदर इतनी कुड़कन है कहना पैदा इनू भोजन हजम नहीं होया, इनू भजन हजम नहीं होया। महाराज का तो कहना जिहड़ा मनमुख है ना उहदा हिरदा बड़ा कौड़ा होंदा। कितना कौड़ा होंदा, एक पंक्ति गुरु नानक दी मैं थोड़े सामने रखा, तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल। पता नहीं ये बूटियां इधर हैं या नहीं, पर एक कौड़ियां बड़ी होंदियां, तुम्मी तुम्मा हिंदुस्तान विच बड़ा बड़ा कौड़ा होंदा, बहुत कौड़ा होंदा। मुंह ते तुसी रखिया नहीं ते ऐन उल्टियां आईयां, इन्ना कौड़ा। तुम्मी तुम्मा विस जहर भी बड़ी कौड़ी होंदी है संख्या। अक धतूरा, अक भी बड़ा कौड़ा है, फिर धतूरा ये भी बहुत कौड़ा होंदा, बहुत कौड़ा होंदा। निम फल, फिर जिहड़ा निम दा फल है ये भी बड़ा कौड़ा है। सारियां चीजां कौड़ियां और अत्यंत कौड़ियां ने, मनुख एक सैकंड वास्ते भी अपनी जबान ते नहीं रख सकता। तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल, मनमुख वसे तिस जिस तू चित ना आवे। साहब कहिंदे ये सारी कुड़त्तण उस हिरदे विच आउंदी है जिस हिरदे विच तेरा वासा नहीं, जिस हिरदे च तू टिकया नहीं, वो बंदा इतना कौड़ा है। ते मैं एक होर पंक्ति भी थोड़े सामने रखा, जिस बंदे की आदत बन गई है ना कोई ऐ भैड़ा ऐ भैड़ा ऐ भैड़ा। गुरु नानक ने तो मुसलमानों भी भैड़ा नहीं आख्या। देखो पीर दस्तगीर दे कोल 17 दिन रहे हैं, ईरान के सूफी फकीरां नाल मेरे पातशाह गोष्ठी करते हैं, समुचे अरब वासियों नूं आपने समझाया है। असी तो सिखां नूं नहीं समझा सके, सतगुरां ने मुसलमानों नूं समझाया सी। और गुरु नानक का पहला सिख पता है कौन है? राय बुलार मुसलमान है। गुरु गोबिंद सिंह का पहला सिख कौन है? भीखण शाह मुसलमान है। कभी बगौर मतला ते करो, ये तो असं निकम्मे वितकरियां च पै गए, गल समझी नहीं ना गल समझा सके। हुण सिख सिख दे हथ का पानी ना पीए तो भीखण शाह के हथ का कौन पानी पीएगा? राय बुलार के हथ का कौन पानी पीएगा? असी तो बहुत वितकरियां च पै गए, निकमियां गलों च पै गए। असी तो सारे जगत को यह संदेशा देना सी, इतने सिख सिख के विचकार दीवार खड़ी हो गई, बड़ी तंग दिली, बड़ी तंग दिली। गल नूं समझे ही नहीं, गल नूं जाने ही नहीं। अगर इतनी तंग दिली गुरु नानक रखते तो मक्के जाने की लोड़ की सी? और थानू पता हो एक साल तो ज्यादा अरसा अरब देशों च रहने तो बाबा जी छकते भी रहना, कितने छकते रहे? कि कोल छकते रहे? मुसलमाना कोलो कितने, और कितने छकना सी? और इतनी मैं अर्ज करा, ये जी पंक्ति सुनाई जाती है ना, बेदीन ना की दोस्ती बेदीन ना का खान, उंज कहते हैं भाई बेदीन बंदे दे हथों ना खा। पर सवाल है बेदीन कौन है? सिफती सार न जाणई सदा सदा अगना। जिन्हों सिफत का पता नहीं, जिन्हों परमात्मा दे नाम का पता नहीं, वह बेदीन है। जे तुसी आखो भी जिहड़ा साडे ढंग नाल वाहगुरु वाहगुरु नहीं जपदा वह बेदीन है, तो फिर बाबा फरीद भी बेदीन है जिहड़ा बैठा है गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि वह तो अल्लाह अल्लाह करता, वह तो नमाज पढ़ता, उन्हें कभी वाहगुरु वाहगुरु नहीं किया। बाबे फरीद की बाणी है, फिर तो बेदीन फरीद नूं भी आख दोगे, फिर तो फरीद के कोल बैठना भी बड़ी औखी गल है। नहीं, बड़ी विशाल दृष्टि चाहिए। फिर स्वामी रामानंद बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब, परमानंद बैठे ने। इतनी मैं अर्ज कर दिया कि अमृत छकाना जिहड़ा है वह सिर्फ इस वास्ते है कि सिखी की कलास में उसका नाम लिखना। देखो ना, जिहड़ा बच्चा हुण पढ़न वास्ते आवे स्कूल विच ते कम से कम नाम भी रजिस्टर विच दर्ज हो गया ना उसका, अमृत छकना नाम लिखाना है। तो हुण बच्चा नाम ते लिखा छड्डे ते पढ़े ही ना, फेल होवेगा और की। अमृत ते छक लिया बंद भजन करता ही नहीं, बंदगी करता ही नहीं। ते कई हुण अमृत छकन तो बाद की बस सिर्फ ना जो लिखा लिया, इस वास्ते ठीक हां बस, होर कुछ नहीं करना। ऐ भी पैड़ा, वह भी पैड़ा, वह भी पैड़ा, फिर दुनिया भर दे उते टीका टिप्पणी करना आदत बन गई, हजम नहीं हुई गल, हजम नहीं हुई। और मैं समझता इतनी छुआ छात उन्हां ब्राह्मणा च भी नहीं सी जिहड़ी कई दफा असी ले आंदे। खिमा करनी ए सिद्धांतिक नुक्ता गुरु नानक देव जी महाराज का है कि अमृत सिर्फ दीक्षित होने वास्ते सिखी की क्लास में नाम लिखाने वास्ते गल नूं समझना है। वितकरे ते तंग दिली वास्ते नहीं है। अगर तंग दिली वास्ते तो सानू गौवां मज्जां नाल भी संबंध तोड़ना पएगा जिन्हां दा असीं दुध पीते हैं। हुण किसी दे ते हथ दा ना लैना ते किसी दे शरीर दे अंदरों निकलिया होया दुध भी पी जाना ते कोई वितकरा नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई तर्क नहीं की, कोई तर्क नहीं की। हुण उस जिहड़ी गऊ है वह जिहड़ी मज्ज है जिहदा असीं दुध पै पीते हैं उहदे उत्ते ते कोई इतराज नहीं ते किसी दे हथ तों भी ना लैना भी नहीं इसते सानूं इतराज है। ते पुरखा तेनूं उसके हथ दे उत्ते इतराज है ते गऊ ते क्यों नहीं इतराज है? उहदे अंदरों निकलिया होया दुध तों पी लिया है, मांस दे चों निकलिया होया तू दुध पी लिया, तू रंचक मात्र इतराज नहीं किया। दरख्तों के तू फल खा लैना है वह तेनों इतराज नहीं। बंदे के हाथ तो तेनों कोई चीज मिले उसके उत्ते तेनों इतराज है। तू ये पुराना ब्राह्मण मत कितों लिया आया, ये तंग दिली तू कितों लिया आया? मैं बगदाद में कोई सत दिन रहा जिथे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पीर दस्तगीर नूं उपदेश किया सी, थड़ा बनया आया उत्थे अज भी, और उत्थे बहुत वड्डी तख्ती लगी हुई है रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक लिखिया है। असी तो प्रचार नहीं कर सके वरना चक्र चेन अरब देशों गुरु नानक के मौजूद ने, अज भी मौजूद है। वो थड़ा अज भी बने, वो तख्ती अज भी लगी हुई है, और उस दियां फोटूआं बकायदा गुरुद्वारा गगड़ में छपियां सन जिहड़ा बगदाद में है। गुरु नानक देव जी महाराज के 500 साल गुरपुरब दिते उत्थे एक निक्का जिहा कमरा भी बना दिता गया उस थड़े दे उत्ते। वो थड़ा अज भी बनया, पीर दस्तगीर ने बनाया सी और उहदे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने उसने बिठाया सी, और वह थड़ी लाई उस तख्ती उत्ते लिखिया होया रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थले चार पंक्तियां ने अरबी दियां जिदा अनुवाद है जिदा तर्जमा है कि रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए उन्होंने आवण दे नाल आबे हयात का चश्मा फुटिया ते अरब की तपदी हुई जमीन सरसब्ज हुई। बस इतना लिखिया उत्थे लिखिया, अज भी लिखिया। और जिहड़ी तख्ती लगी हुई है ना उहदे उत्ते जिहड़ा सम्मत लिखिया होया हिजरी वह पौने 500 साल बाद जो है पहले का है, जो जन्म साखी दे सम्मत लिखिया होया बाबे का मक्के जाण दा उही सम्मत उत्थे लिखिया होया बकायदा लिखिया, और तख्ती बड़ी पुरानी। सारा बगदाद गुरु नानक देव जी महाराज के कदमों से झुके ते उत्थे जिहड़ा मजौर बैठा है ना, मजौर जिसनों असी पुजारी कहते हैं, उत्थे एक पुजारी भी है, उन्हों मुसलमान लोग मजौर कहते हैं। पीर दस्तगीर की कबर नाल है ते गुरु नानक का थड़ा नाल है। वो कबर की भी पूजा करता है, उहदे उत्ते चांदी का बकायदा जो है वर्क चढ़िया होया कबर के उत्ते, फुल उत्थे भी भेट करता है, फुल इत्थे भी भेट करता, उहदे हाथे च माला हुंदी अपना जपदा। तो जद मैं दर्शनां वास्ते गया उत्थे विजिटर बुक मैं देखी बड़ी दुनिया आउंदी उहनां दे नां लिखे होए सन। मैं एक दिन सारा दिन उत्थे बैठा रहा, मेरा जाण दा उत्थों मन ना कीता। किधरे उसने महसूस कर लिया भी दिन भर का इत्थे बैठे ते ने कुछ छकिया छुकिया नहीं, ते उह नान लैके आ गया नान। ते मैनूं कहण लगा हो ते तुसी सिख, ते करीबन करीबन अज तक जिन्ने आए ने मैं किसे नूं आखिया नहीं, पर थानू इस वास्ते कहना तुसी सवेरे दे आए हो ते हुण शाम हो गई है, गए नहीं इत्थे। ते मैं ये देखिया थानूं थोड़े कोल कुछ खाने वास्ते भी नहीं सी, ते जो थानू इतराज ना होवे ते नान लै लो, क्योंकि कहिंदा मैं तस्बीह फेरदा पिया पर मेरे मन विच बार बार यह ख्याल आ रहा है तुसी कुछ खाधा नहीं, ते मेरा मन नहीं जुड़दा पिया, बार बार ख्याल आउंदा, ते जे थानू कोई इतराज नहीं ते लै लो। मैं कहा ठीक लै लैंदे। जिस वक्त मैं उसदे कोलों नान लै लिया उहदी अखां भर आईयां, रोण लग पए। मैं कहा रोण क्यों लग पए, मैं तो लै लिया इनकार तो नहीं होया। कहिंदे तुसी पहले ही बंदे हो जिहड़ा लै लिया, वरना अज तक मैं जिन्हां नूं पेश कीता उन्होंने इनकार कर दिता, मेरे हथों नहीं दे। जारो जार रोई जाए, जारो जार उस थड़े उत्ते मत्था टेकी जाए जिहड़ा गुरु नानक दा सी। कहिंदे कि तुसी पहले ही सिख हो जिहड़ा लै लिया, नहीं तो मैं सोचता सी गुरु नानक दे सिख कैसे ने, क्यों वितकरा करदे, क्यों वितकरा करते हैं। कहिंदा मैं भी थोड़ा इतिहास पढ़िया, गुरु नानक का पहला सिख राय बुलार से, ये क्यों वितकरा करते। मैं कहने कोई वितकरे वाली गल नहीं, जिन्होंने गुरु नानक नूं समझिया कोई वितकरा नहीं, और तेरे वर्गा बंदा जिहड़ा तस्बीह फेरदा खुदा का नाम जपदा तेरे वर्गे बंदे दे हाथ जिस चीज नूं छू जाणगे ते पवित्र होएगी, कौन कहिंदा पवित्र होंदा। इस तरह दीआं चार पंज गल्लां मैं उसनूं कहीआं। बाद विच उसने मैनूं खजूरां वी तोड़ के दित्तीआं, उत्थे खजूर लगी हुई सी काफी, ते उस थड़े दे नाल ही कहिण लगे इह गुरु नानक दे वक्त दी चली आ रही है खजूरां, इह दो खजूरां। कहिण लगा मैं किसे नूं तोड़ के नहीं दित्तीआं, अज तुहानूं देणा मैं। उहनूं उपर विचारा चढ़िया, वह खजूर मैं हिंदुस्तान भी लियादियां सन, कई फिर मैं बाद मंडिया सन, उसने मैनू प्रसाद के रूप जो है दितिया। कह तो मुराद गुरु नानक का घर बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, गुरु नानक का जिगरा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। अगर सिख तन दिल है वह गुरु नानक का सिख नहीं हो सकता, इतनी मर्ज कर। गुरु नानक का सिख तो बड़ा विशाल जिगरे का मालिक होंगे, गुरु नानक का सिख बहुत वड्डी जिगरे का मालिक होंगे। तो सिख सिख नाल वितकरा खड़ा कर देवे ते सिख मुसलमानां नाल किस तरह सांझ पाएगा, सारे जगत नाल किस तरह सांझ पाएगा। जिहड़ी बाणी साडे कोल है सी सारे जगत दी झोली च पाणी है, सारे जगत नूं सुनाणी है, सारे जगत नूं दसणा है। साडे कोल सौगात है, साडे कोल बहुत वड्डी गल है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करां, ज्यों ज्यों बंदा नाम जपदा है बिरती अंतरमुखी होंदी है, अपनियां कमजोरियां दा पता चलदा है। तो ज्यों ज्यों अपनियां कमजोरियां दा पता चलदा है तो लोकां दा फिर उत्ते ओह टीका टुकणी नहीं करदा, गल खतम, वह अपने उत्ते ही करता। हुण बाबा फरीद कहिंदे ने, काले मैदे कपड़े काला मैदा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरां लोक कहन दरवेश। कहिंदा मैं ते गुनाहां नाल भरिया होया, लोकी मैनू फकीर कही जांदे, लोकी मैनू संत कही जांदे। हुण बाबा फरीद असली संत है, पर कहिंदा नहीं मैं ते गुनाहां नाल भरिया होया। ते जिहड़े नकली ने वह कहिंदे सारे गुनाहगार ने, बस असी चंगे हां, बई सारे ही पै रहे ने, सारे ही पै रहे ने, असी चंगे। एक बिरती बन जाती। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक पौड़ी लिखी है, बस कह के मैं समाप्ति करा, समा हो गया। उस पौड़ी विच महाभारत का द्वापर युग का इतिहास है। कौरव ते पांडुआं का बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा है, तो भाई साहब ने बड़े संक्षेप विच लिखिया है। वो दोवें श्री कृष्ण जी को चले गए, तुसीं साडा फैसला करो। ते उन्हां दिनां दिल्ली का नाम सी हस्तनापुर। ते श्री कृष्ण फैसला करन लगे, कहन लगे फैसला करन तो पहले मेरी एक शर्त मननी होवेगी। कौरवों ते पांडुआं ने वो दोवें हाथ जोड़ के कहन लगे मन दे। कौरवों का जिहड़ा मुखी सी वो सी दुर्योधन, ते पांडुआं का जिहड़ा मुखी सी वो सी युधिष्ठर। युधिष्ठर नूं कहे तू जा हस्तनापुर विच, जिहड़ा सब तो भैड़ा बंदा होवे ना वह लभ के ले। भाई साहब ने कथा लिखी, भैड़ा बंदा लभ के ले फिर फैसला करांगे। ते जो युधिष्ठर चला गया ना, ते दुर्योधन नूं कहन लगे जा तू हस्तनापुर विच, जिहड़ा सब तो नेक बंदा होवे, पुनीत बंदा होवे, पवित्र बंदा होवे तू लभ के ले फिर फैसला करांगे। दुर्योधन भी चला गया। आखिर दोपहर ढलदिया युधिष्ठर वापस आया, पर कल्ला, नाल कोई नहीं। कृष्ण जी कहन लगे तेनू आख्या सी कोई भैड़ा बंदा लभ के लियाई, ते तू ते कल्ला आ गया। ते हाथ जोड़ के युधिष्ठर कहिंदा भगवान कोई भैड़ा होवे ते मैं लभ के लियावा, सारे ही चंगे, सारे ही लेक, सारे ही पुनीत। ते जे वाकई तुहानू भैड़ा बंदा चाहिए तो मैं हाजिर हाँ। हाथ जोड़ के कहन लग मैं हाजिर, इंज हाथ जोड़ के। शाम नू सूरज ढलदिआं दुर्योधन वापस आया, ते ओ भी कल्ला। ते कृष्ण जी कहन भी तेनू कहा सी कोई नेक बंदा लभ के लिया, कोई पवित्र बंदा लभ के लिया, तू ते कल्ला आ गया। ते दुर्योधन कहिंदा भगवान कोई नेक होवे ते मैं लभ के लियावा, सारे ही कमबख्त पै रहे, गालां कढ के सारे ही कह, एक भी चंगा कोई हूँ, एक भी चंगा कोई नहीं, तो मतलब है सिर्फ मैं ही चंगा, बाकी सारे ही पै रहे, सारे ही पै रहे। श्री कृष्ण कहन लगे शहर यही है हस्तनापुर, इस युधिष्ठर नूं कोई भैड़ा बंदा नहीं लभिया, तेनू कोई चंगा नहीं लभिया। दरअसल इस शहर विच भैड़े बंदे भी हैं, चंगे बंदे भी हैं। युधिष्ठर की दृष्टि ऐसी है इन्हू चंगे ही चंगे दिखाई देते, तेरी दृष्टि ऐसी तेन भैड़े ही भैड़े दिखाई देते। दृष्टि है, वेखण का ढंग है, समझण का ढंग है। बहादुर शाह जफर कहता है पहले मेरी दृष्टि यह सी मैं लोगों के भैड़ वेखता से पर हूं मेरी दृष्टि यह बन गई है मैं अपने ही औगुण दिसते हैं दुनिया में नहीं दिसते जब न थी अपने गुनाहों की खबर देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। कीर्तन जिसनों हजम हो गया है कथा जिसनों हजम हो गई है नितनेम जिसनों हजम हो गया है वाणी का पाठ जिसनों हजम हो गया है वो इतना निर्माण हो जाएगा वो कभी नहीं कहेगा मैं चंगा ते बाकी माड़े आपस को जो भला का आवे तिसे भलाई निकट ना आवे वो तो इतना ही आखेगा कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा से वो सड़ा मित्र तो साहब कहने जे को खावे कोई छके पर जे को पुनचे कोई हजम भी करे हूं हर जना खना हजम नहीं कर सकता इस पूजा जे को खावे जे को पुनचे तिसका होए उदार पार उतारा उसका हो जाएगा किसका जिड़ा छके ते छकन तो बाद हजम भी करे इनू पचा भी लगे ये पच भी जाए। तो इस थाल विच तीन पदार्थ ने सत दा सत दी विचार नाम दी विचार संतोख दी विचार थाल विच तीन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबसे आधार हो जो सारिया का आधार है अमृतमई नाम ओदी विचार है सत दी विचार है संतोख दी विचार है जे को खावे कोई चके कोई भी चके कोई भी छक सकता है कौन छकेगा जिन्हों भुख लगी है जिन्हों भुख ही नहीं लगी कि खाब छकना है उसने ते भुख किनू नहीं लगेगी जिहड़ा रोगी है अंदरों जिहड़ा रोगी उन्हों भुख नहीं लगेगी। मैं लफ्ज़ फिर दोहरा रहा जिहदे शरीर नू ताप चढ़िया होया उन्हों रोटी की भुख नहीं लगेगी भोजन की भुख नहीं लगेगी ते जिहदे मन नू ताप चढ़िया होया विकारां दा उन्हों भजन की भुख नहीं लगेगी नाम की भुख नहीं लगेगी। जे को खावे कोई भुख लगे कोई छके पर जे को भुनचे छकन तो बाद हजम भी करे भुख ते लगती है छक ते लिया हूं हजम नहीं कर सके उल्टियां पई होंगे जे को खावे जे को हुंचे तिसका होए उदारो कोई छके ते फिर इसनों हजम कर लवे फिर पार उतारा उसका होंगे मेरे पातशाह बख्शिश करन कीता होया सतसंग जपया होया नाम कीती हुई बंदगी थानू हजम होवे ताकि उसका खून बने जिहड़ी रोटी हजम हो जाए उसका खून बनता है ते जिहड़ी हजम ना होवे उसका खून नहीं बनता। जिहड़ा कीता होया भजन हजम हो गया ना उहदा आत्मक बल बनता है आत्मक रस बनता है ते जिहड़ा हजम ना होवे रस नहीं बनता फिर खुशकी बनी रहिंदी है क्रोध बनिया रहिंदा मत्थे ते वट पए रहिंदा चिड़चिड़ा सुभाव बनिया रहिंदा इस तों सबूत इहो जांदा है हजम नहीं होया भोजन हजम ही नहीं होया खून कित्थों बणिया भोजन हजम ही नहीं होया रस कित्थों बणिया। तो मेरे पातशाह सब तों प्रथम ते भुख पैदा करन ते भुख पैदा करन तों बाद छक्कण दी सौगात थानू बख्शा ते फिर निरी छकन की गल भी ना होवे हजम भी हो ताकि अंदर अध्यात्मक बल बने अध्यात्मक रस बने इतनिया विचार इस वक्त प्रवान करनिया साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज मेहरा वरकाऊ जिन्हों का यह मुदावनी का शब्द लैके मैं विचार थोड़े सामने रखिया ने अंत होंगी ये अरदास तो अरदास ही है मेरे पातशाह मेहर करन थोड़े अंदर भुख पैदा होवे मेरे अंदर भुख पैदा हो और तुसी छक सको ते छक के हजम कर सको ऐसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ऐसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कलावर काम सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। तुसी टिक के गुरमतियां गल्लां नूं सरवण कीता भुल चुक लई खिमा दी याचना गज वज के फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।